પાણી લીધે
ગોપી જન વલ્લભા ગિરિવર હારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન મૂન તેરા વન ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ જ્ઞાન નિરંજનસ્ય શલાકાયા ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ શ્રી ચૈતન્યામનોહિતં પદકમલં શ્રીગુરૂન્ વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપાં સાગ્રજાતાં સહગના રઘુનાથાન્વિતં તં સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજના સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધા કૃષ્ણપદા સહગના લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતં ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે સપ્તકાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિષભાનુસુતે દેવી નમામી હરિ પ્રિયે. सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द प्रियाद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। एक पवित्र स्थान में जो प्रवेश है वो तभी संभव है जब भगवान की कृपा से हमारे हृदय खुल जाते हैं श्रद्धा से और भक्ति से, तब हम सच्चे दिल से हमारा अनंत सौभाग्य जो हमें प्राप्त है प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन ब्रह्म समेत में बताया गया कि जब हमारी आंखें हैं जब प्रेम सजे जाते हैं आध्यात्मिक प्रेम तब हम वास्तव में कृष्ण देख सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है सिर्फ भक्ति के द्वारा है सिर्फ भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकता जैसे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सतयो भजाम्य हम जैसे वे समर्पण करते हैं कृष्ण की तरफ हम जिस भावना से जाते हैं कृष्ण भी उसी प्रकार से आदान प्रदान करते और वृंदावन कृष्ण की व्रज भूमि का ही एक प्रकट स्वरूप है। वृंदावन श्री कृष्ण भगवान से अभिन्न है जैसे हमारी भक्ति होती है उसके अनुसार भगवान प्रकट होते हैं। हम देखते हैं कि जो महापुरुष हैं उनके जीवन में कैसे वो भगवान के लिए पुकारते हैं हे राधे जो छह गोस्वामी हैं वो दिन रात कृष्ण को देख रहे थे कृष्ण को हर समय वो देख रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करो इस तरीके से। वृंदावन जो है श्री कृष्ण भगवान का उसी भावना समझा जा सकता है।
मेरे को ना वो ऐसा हैंडसेट दो क्योंकि उनसे मराठी आ
के नौ विधियां हैं जिसमें से जो मूल सिद्धांत जिससे हमारा भगवत प्रेम बढ़ता है वो है श्रवण और कीर्तन करना। इन सब दिव्य विषयों को श्रवण करने से तम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रेम का एक कार्य शुरुआत में वो एक तपस्या हो सकती कि लेक्चर में बैठना ही तपस्या हो सकती, विशेष करके जब मैं बोल रहा हूँ वैसे जब टाइम ज्यादा हो जाए हो सकता है कि वो तपस्या, लेकिन वो दिव्य ध्वनि जो है जो शास्त्रों के द्वारा प्रदान किए गए हैं वो दिव्य विषय है। जब हम बहुत उत्सुक होते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में कृष्ण हमें रजोगुण तमोगुण से मुक्त कर सकते। सुशुद्धना वासुदेव कथा रुचि महादेवया पर पुण्य तीर्थ श्रीमद् भागवत बताते जब हमें भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुकता होती, जब हम महापुरुषों की सेवा में उत्सुक होते हैं ये सत्संग के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा महापुरुष के आशीर्वाद के द्वारा जो उनके हृदय से प्रकट होते हैं, जब हम अपने सेवा से उनको प्रसन्न करते हैं तो इसलिए हम ध्यान पूर्वक हमारी चेतना को समर्पण करें, हमारा प्राण को ही जो समर्पण करें, अपने आप को मग्न करें श्रवण में लगे कृष्ण के अचिंत्य लीलाओं में। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मेति मामेति स्वर्गः। जो व्यक्ति समझ जाते हैं कृष्ण के प्रकट होने के, जब वो इस दुनिया में आते हैं वो वापस फिर जन्म नहीं लेता। कृष्ण पवित्र वो परम पवित्र हैं और उनके बारे में सुनने से हम शुद्ध हो जाते पवित्र पवित्र वा सर्वान वस्तन गतो मरित पुंडरी का अक्षम स भैया भयंतर शुचि। चाहे हम शुद्ध हों या अशुद्ध हों वो तो पूर्व जन्मों का फल है। जो कुछ हो गया उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कर सकते, प्रथम वर्तमान स्थिति में हमें कहाँ जाना है। कृष्ण को स्मरण करने से हृदय में हम पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं और ये बहुत सरल है। वृंदावन में श्रीमद् भागवत का सुनते हैं वो कृष्ण के ऊपर सतत ध्यान में रहते, कृष्ण के बारे में बोलते हुए, कृष्ण बारे में गाते हुए, कृष्ण को हमेशा याद करते हुए। कृष्ण इस धरती पर अपनी लीला करते हैं और पूरी दुनिया का उद्धार करते हैं। लेकिन व्यासदेव के द्वार जो परंपरा में आने वाले आचार्य हैं, उन्होंने शब्द ध्वनि को बना के रखा है उनके लीलाओं और शिक्षाओं के बाद, जिससे कि हर एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान से उसको वही अनुभव हो सकता है जो वृंदावन में हुआ है, सिर्फ श्रवण और कीर्तन करने के द्वारे और स्मरण करने के द्वारे, इस सेवा भावना के द्वारे। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान के कथा और श्रवण और कीर्तन करें, उत्साह बढ़ाने से भौतिक अस्तित्व के सब बाधाओं से मुक्त हो सकते, जो कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के रूप में प्रकट हो। अध्यात्म का अधिभौतिक और अधिदैविक तीन प्रकार के दुख हैं। चाहे हम कोई भी हों, जो भी हमारे पास है, जो किसी भी वातावरण से हम हों, वही तीन प्रकार के ताप हमारे ऊपर आएंगे। शरीर और मन के दुख, चिंताएं, स्वाभाविक तकलीफों के दुख, भूकंप, दूसरे प्रकार के दुख, परिवार वाले, बंदरों की तकलीफ, ऐसा नहीं है कि भौतिक स्थिति बदल जाती। साधारण पानी जो है, कमल का फूल उसी पानी में पवित्र हो जाता है, वो किसी प्रभावित नहीं होता। उसी तरीके इस दुनिया में भी बहुत प्रकार के दुख, इसमें शरीर में जितने सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं, कृष्ण की कृपा से हम अपने शाश्वत आत्मा से अपने आप को जोड़ सकते। हम आत्मा के प्रेम से जोड़ सकते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, वो ये सुख कृष्ण की असीमित सुंदरता, कृष्ण की असीमित संपत्ति, कृष्ण की असीमित शक्ति, महिमा और प्रेम, और हमारे लिए सब जीवा को, और उसी से हम प्रसन्नता प्राप्त करते। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कहीं पर भी जो सुख को डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि वो शाश्वत है और दिव्य है। जब कृष्ण धरती पर प्रकट होते हैं हम ये आशा नहीं कर सकते कृष्ण हमारी शक्ति के अनुसार ही कार्य करे। कल हमने परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज से सुना जब श्री प्रभुपाद ने भक्तों को भक्तों को कोई कठिन सेवा देते तो सब भक्तों को प्रभुपाद जी को देखते और कहते कि असत्य रूप से कहने लगे और बोले प्रभुपाद जी ये असंभव है। श्री प्रभुपाद कन्विंस्ड हुए और बोले कि असंभव मूर्खों के शब्दकोश में है, कृष्ण के लिए कोई चीज असंभव नहीं, कृष्ण की अचिंत्य शक्तियां। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं शरीर और आत्मा में क्या संबंध है, वो सिखाते हैं। भगवान में और शरीर, भगवान में आत्मा में क्या संबंध है, कर्मों के स्वभाव से कैसे हम अपने आप को कर्म से मुक्त कर सकते हैं और अंततः कृष्ण प्रेम, कृष्ण को समर्पित करके प्राप्त कर सकते हैं। अनमन बहुमत भक्त मध्या जी माम नमस्कार। कृष्ण को स्मरण करके, उनकी पूजा करके, उनको प्रणाम करके, इस तरह से हम कृष्ण के भक्त बन, इस तरीके से कृष्ण हमें वचन देते हैं कि निश्चित ही हम उनको प्राप्त करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, बहुत ही सुंदर विशाल विराट स्वरूप। कितने भी हम टेक्नोलॉजी में प्रगति करें, कोई मूवी मेकर जो है मूवी बनाने वाले कितने भी स्पेशल इफेक्ट कर, कभी भी वो जो अर्जुन ने देखा विश्वरूप में उसके बराबर कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि कैसे कृष्ण की भगवान कपिल देव के रूप में देखा, भौतिक अस्तित्व के बारे में तो बिल्कुल अचिंत्य है। हमारे बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो रहस्य नहीं समझ सकते, वो एक किसी अणु के कण की महिमा भी नहीं समझ। जितना हम गहराई में जाते हैं वर्णन नहीं समझ पाते। और ब्रह्मांड का कहना है वो अलग अलग प्राणी और
જે દ્વિતીય અભિયંતા એ સંપૂર્ણ ભૌતિક સૃષ્ટિ છે, 311 લક્ષ વર્ષ જીવંત રહેતા સર્વાંશી પિતા
ત્યાંથી
શરીર જે ભૌતિક પ્રકૃતિ ગોષ્ઠ નહીં, તાત્પુરત ભગવાન પરંતુ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે ભાગવત કરતો તે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ
ઓર આનંદ સે ભરેલો હૈ. इस दुनिया में सब कुछ है, उसके अस्तित्व वही है, सब कारणों के कारण है, वो परम ब्रह्म है. जो इस दुनिया में प्रकट होते हैं वो वृंदावन में प्रकट होते हैं, एक छोटे बालक के रूप में आते हैं अपने सारी शक्तियों के साथ. लेकिन उनके सारी शक्तियां जो है वो अधीन है, वो उनके परम शक्ति के अधीन, जो कि प्रेम है. जो प्रेम है, कृष्ण भक्तों को अपने प्रेम से वश में रखते हैं और उनके आदान प्रदान कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा वश में हो जाते हैं. जब कृष्ण इस दुनिया में लीला करते हैं, भक्त ये नहीं सोचते कि ये कोई काल्पनिक चीज है, ये सिर्फ कोई चीज है जो हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए है. मुझे याद है 1971 में वृंदावन मैं 20 वर्ष का, मैं बहुत अचिंत्य कथाएं सुन रहा था. मेरे को इतना साफ लग रहा था, मैं कैसे भी विश्वास नहीं कर सकता. अगर भगवान है तो क्या है भगवान नहीं कर सकते. हमने सुना कि कैसे यशोदा मैया, बालक कृष्ण कृष्ण अपने स्तनों से दूध दे रहे थे और जब वो पिला रहे थे कृष्ण ने अपनी जम्भाई मुंह खोला, तो मुंह इतना छोटा सा था जैसे जम्भाई ले, तब उन्होंने देखा यशोदा मैया ने भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड को देखा गोपाल के मुंह में. ये कैसे संभव हो सकता. आप अपना मुंह खोल के देखिए और मैं अपना मुंह खोल देख सकता हूं. कभी कभी अच्छा है कि नहीं खोलें अपने मुंह. क्या देखा बाल कृष्ण उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड को देख, और वो ऐसे कोई काल्पनिक नहीं था. अगर कृष्ण अपने अपने मुंह से पूरे सृष्टि को प्रकट कर सकते हैं तो वो अंदर भी प्रकट कर सकते, और बस उनका मुंह 2 इंच ऊपर बड़ा है, क्यों ऐसा होता? भगवान बन के क्या फायदा कर, ये नहीं कर सकते। कृष्ण वृंदावन में इतने विशेष रूप से करते, वो यशोदा मैया सोचते है कि कृष्ण उनके भगवान, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते कि मैया के अंदर वो स्नेह के भाव है। यशोदा मैया सोच रही है ये को कृष्ण को कोई बीमारी हो गई और उनको बहुत चिंतित हो जाता, कोई को अपच हो गई, कोई बीमारी हो गई, और कृष्ण मुस्कराती गोकुल महावन से यमला अर्जुन पेड़ों का उद्धार होने के बाद दमोद उपनंद और सारे ग्वाल बालों ने आपस में चर्चा करने लगे कि महावन ये अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि पोता नाम शकटासुर तृणावर्ता अभी दोनों पेड़ों गिर रहे हैं, हमको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे सुरक्षा, हमें वृंदावन जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत सुंदर वन है जहाँ पर यमुना है, गोवर्धन पर्वत है, हम वहाँ पर जाएंगे। उन्होंने सब कुछ बैलगाड़ी पर रखा और निकल पड़े छठी कर रहे चलते वृंदावन की ओर आए। पांडेरवन इलाके में कृष्ण ने बत्सासुर का वध किया, खादिरवन में कृष्ण ने बकासुर का वध किया, फिर उनको कृष्ण को बछड़ों की सेवा दी गई जिम्मेदारी बछड़े चराने की। पिछले 3 दिन में अब सब हम ब्रह्मा विमोहन लीला के स्थान में गए, ये बहुत विशेष कहानी, कई कारणों से विशेष है, अनंत कारणों से, एक विशेष कारण है कृष्ण राधा की कृपा से ये प्रभुपाद जी का जो है अनुवाद किया हुआ ये आखिरी अध्याय था, उनके श्रीमद भागवत की जो टीका लिखी उसका आखिरी अध्याय जहाँ तक प्रभुपाद ने किया वो ब्रह्मा विमोहन लीला है। उन्होंने हमारे उनके आखिरी दिनों में उन्होंने ये अनुवाद, तो इसलिए हमारे हृदय में उसका विशेष स्थान। शुरुआत ऐसी होती है वृंदावन एक पवित्र स्थान में तपोनी, कृष्ण एक दिन सवेरे उठे और निश्चय किया कि मैं अपने मित्रों के साथ जल्दी निकलना चाहता हूँ यमुना के किनारे पिकनिक करना वृंदावन में। यशोदा मैया ने उनको स्नान करे और उनको सजाया, नए नए वस्त्र पहने और मणि सजाए, मोर का पंख लगा, कृष्ण सुंदर थे, उनके पास एक सिंह था जो भैंस के सिंह से बना हुआ एक आवाज, वो हॉर्न बजाने लगे जैसे गायों को पुकारने के लिए, और सब हजो हजार सब ग्वाल बाल एकत्र हो गए और सबके पास सबके बहुत सारे बछड़े थे। अगर हम ध्यान करें कृष्ण की अचिंत शक्ति पे ध्यान कर सकते हैं, वृंदावन जो है 32 स्क्वायर माइल है और कृष्ण के हजारों हजारों ग्वाल बाल हैं और कितने बछड़े हैं। श्रीमद् भागवत ने कहा असंख्य, ठाकुर बताते असंख्य का मतलब होता है अनंत। अनंत का मीनिंग क्या है हम उसके बातचीत कर सकते बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम कोई भी चीज़ असीमित हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा मन बहुत सीमित है। इस तरह से श्रद्धा के द्वारा ही हम अनंत को समझ सकते हैं। जब अनंत जब अनंत की कृपा से जब हम अनंत कृपा करके हमें प्रकट करते हैं तब हम अनंत को समझ सकते हैं। अनुवाद करने वाले हैं बोधन के लिए क्षमा चाहता हूँ। हम समझ नहीं सकते कि अनंत क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों के आधार पर हम एक बताते हैं कि असंख्य का अर्थ क्या है वो समझा कि एक आगे 17 जीरो लगाए जाए, 1000017 बार अगर लगा दिया जाए। मेरा स्कूल सबसे खराब विषय था मैथमेटिक्स, मैं स्पेलिंग में अच्छा था, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था। जब मैं गौड़िया मठ के समझ में इतने बछड़े थे कि 1000 और 32 स्क्वायर माइल में हजारों गुफों के साथ और कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं था। कृष्ण चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड को फिट कर कृष्ण सब कुछ करते। हम शंका नहीं करते कि ये कैसे सत्य हो सकता है। जब हम सुनते हैं जब हम जितना असंभव होता है उतना ज्यादा हम सुखी होते हैं और हम और आंखों में प्रेम के स्नेह चमकाने लगते हैं। लंच बॉक्स थे, टिफिन थे, तो उनके माता उनके लिए अच्छा बनाते थे और लकड़ी थी गाय चराने, हर एक के पास मुरली थी और भैंस का सिंह। उनके माता उनको अच्छी तरीके समझा सजाते थे और छोटे बालक छलांग लगा रहे थे और खेल रहे थे और सब कृष्ण के साथ और कृष्ण की प्रसन्नता के कृष्ण ग्वाल बालों के लिए और ग्वाल बालों कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। माता पिता ने जैसे उनको सजाया उनसे खुश नहीं थे और अपने आप को सजाने लगे पत्तियों से, फूलों से, मोर के पंख से और खनिजों से। कृष्ण ने फिर अपनी बांसुरी बजाई सबको भी मोहित कर देती है मुरली केवल। इतने छोटे से बालक थे और जो बड़े गोपियां थे वो सोच रहे थे यशोदा माता ने अपने अपने प्रेम से अपना दूध पिलाते हैं, इसलिए यशोदा माया के प्रेम से शक्ति प्राप्त की। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो इतना मीठा होता है। और जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते और एक ग्वाल बाल अपना हॉर्न बजाते हैं और एक कहने लगा ये हॉर्न का आवाज अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोकिले की तरह मैं कोयल की तरह गाऊंगा। और दूसरा बोल और ग्वाल बाल जो है कोयल की तरह गाने लगे। और दूसरे गोपाल बोले ग्वाल बाल जो है अपनी गति के लिए मशहूर होते हैं और देखो ये पक्षी पक्षी उड़ रहे उसकी छाया का पीछा करते एक दूसरे के पास डालने लगे सब दौड़ने लगे और पेड़ के छाया के नीचे इसे दौड़ने लगे। और फिर भंवरों की आवाज आ रही थी और सब गाने लगे सब भंवरी की आवाज करने लगे आप सोचिए लाखों 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 सब ग्वाल बाल ऐसे कर रहे हैं सब करके देख कर जब हंस को देख रहे थे पानी अपने गर्दन को बहुत सुंदर सजा और अपनी गर्दनों को हिला रहे थे मन को आकर्षित हंस की तरह और फिर बत्तख थे जो शांति से बैठे थे और ग्वाल बाल उनके पास पहुंचते नकल करने लगते मोरों का नृत्य देखते और मोर की तरह डांस करने लगे हुए मोर की आवाज करके देखा बहुत अच्छा है। दूसरे ग्वाल बालों ने उनको बंदरों को देखा जब पेड़ों के साथ खेल रहे और वो खेल रहे बंदरों की पूंछ पकड़ ली बंदरों के पास में बैठते बंदर से मुंह बनाते गुस्सा मुंह दिखाते बंदर का मुंह देख और बच्चे जो हैं बंदरों की नकल करते बंदर डर जाता था और वो भाग जाता था और फिर वो भी छलांग लगाते बंदरों के साथ। कभी कभी मेंढक के पास में रहते और मेंढक छलांग लगा वो भी बाल बाल भी छलांग लगाते दोनों छलांग लगाते मेंढक सरोवर में जाते गोप ग्वाल भी पानी में खेलते और सरो में जाते अपने परछाइयों को देखते थे पानी में अपने परछाई को डांटने लगे क्यों मेरी नकल कर रहे हैं तुम कौन हो ऐसे क्यों कर रहे। कभी कुएं के पास जाते और वो हंसते कुएं के पास जाते हैं बुरे शब्द बोले और उसकी प्रतिध्वनि सुनते अरे और आवाज सुनाई पड़ती है ऐसे बुरे शब्द जो प्रतिध्वनि को गाली देने लगते, गोप इस तरह से खेल कृष्ण किसी दृष्टिनेरी को देखते, और ग्वाल बोलते हैं कि मैं कृष्ण को पहले स्पर्श करूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं जाऊंगा कृष्ण पर, तो सब दौड़ते हुए जाते, हजारों गोप जो दौड़ते हुए कृष्ण को स्पर्श करने के लिए, और कृष्ण के पास हर एक सोच रहे थे कि मैं पहले स्पर्श करूंगा। कृष्ण इस तरह सारे भक्तों की इच्छाओं को पूरी कर रहे, बहुत सारे अमलों की फूक के साथ गेम खेलते थे, इस तरह से अपना समय बिताते थे हंसते हुए। सुखदेव गोस्वामी के एक सुंदर श्लोक है कि ज्ञानी जो है वो परम सत्य को ब्रह्मन मानते हैं, सर्वव्यापी निशेष ब्रह्म मानते हैं, योगी जो है भगवान को परमात्मा स्वरूप मानते हैं जो सबके हृदय में स्थित भगवान, भक्त जो है उनको भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन ये ग्वाल बाल जो है इतने सारे पुण्य एकत्र करने के बाद वो परम ब्रह्म को जिनके साथ वो खेल रहे हैं उनको एक साधारण बालक मानते हैं, उनके साथ कुश्ती खेल रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं ग्वाल बाल, ग्वाल बाल बोलते हैं कृष्ण को मोर बनने के लिए, सब लोग मोर की तरह नृत्य करने लगते हैं, सब हंस रहे होते हैं। कृष्ण पुण्य ये भौतिक क्रिया नहीं है, सच्ची स्वीकृत है, निस्वार्थ अहेतु की अप्रीतियता भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा, और उनके पास अनंत अनंत शक्ति थी भगवान की, जिससे कि वो भगवान के साथ खेल रहे थे अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में। रूप गोस्वामी बताते हैं किसने के तरीके कि कृष्ण हमारे हृदय को चुरा लेंगे, सारे दुखों से मुक्त कर देंगे। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर आप आसक्त हो इस दुनिया के चीजों से, आसक्त अपनी संपत्ति परिवार संपत्ति से, आसक्त किसी भी चीज से आप आसक्त हो तो आप किसी घाट मत जाओ, यमुना के तट पर मत जाओ, क्योंकि अगर आप वहां पर जाओगे तो वहां भगवान गोविंद को देखोगे अपनी मुरली बजाते हुए त्रिभंग रूप को देख रहे, और जब कृष्ण अपनी दृष्टि प्रकट करते हैं हृदय में तो वो आप अनंत रूप से आकर्षित हो जाते कृष्ण के प्रति। कृष्ण भगवान गीता में कहते जो भी दुनिया में सुंदर दिखाई पड़ते हैं वो एक छोटा सा चिंगारी है, मेरे प्रेम का एक अंश है। जब हम स्रोत से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम कठोर बन जाते, तो बहुत कोमल बन जाते। वैष्णव जो है जब हम कृष्ण से जोड़ देते हैं, जन्म जाते कि जन्माद्य तो सब कुछ कृष्ण से, ओम पूर्णमेदा पूर्णमेदम, सारे भौतिक और आध्यात्मिक चीजें भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए हम कृष्ण को कृष्ण की उपस्थिति हर एक चीज में देखते हैं। हम देखते हैं कि कृष्ण सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जब हम हर एक जीव को कृष्ण के अंश के रूप में देखते हैं और तब आपस में अनंत प्रेम होते हैं कृष्ण के प्रति, जो कि प्रकट होते, उनकी दया और प्रेम हर जीव के लिए प्रकट होते, सबके प्रति आदर, सब कुछ कृष्ण संबंधी देख। जब गोप खेल रहे थे और बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे, जो भी गेम जो कि कभी खेले गए हैं पूरे ब्रह्मांड में, सारे जो खेल के वो गोलोक वृंदावन से ही शुरू होते हैं। ये ब्रह्म ज्योति नहीं, वैकुंठ भी नहीं, गोलोक का जा रहे सारे गेम्स जो हैं वो कृष्ण के प्रेम के स्नेह का स्वरूप है, जो प्रेम जो है कृष्ण और भक्तों का, और भक्तों का एक दूसरे के साथ प्रेम है। उस समय विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते और प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण और उनके मित्र इतने मग्न हो जाते थे, खेलने में इतने मग्न होते, इतने ज्यादा मोहित हो जाते भगवान के प्रेम के द्वारा, किसी तरीके से वो कभी खेलना बंद नहीं कर पाते। लेकिन उसी समय प्रसाद तैयार था, तो भगवान की स्वयं की योग माया लीला शक्ति से हर रोज दोपहर के भोजन के समय के पहले कोई एक असुर आता था वृंदावन, जिससे कि खेलना बंद हो जाए और उनके भूख भी बढ़ जाते, जिससे अच्छी तरह के प्रसाद का आनंद ले सके। और इस समय भगवान की लीला शक्ति से परमात्मा हृदय में, तो अघासुर को भेजा कंस, कंस बहुत दुखी हो गया था, उसने इतने सारे असुर भेजे वृंदावन में कृष्ण सब ब्रजवासी का वध है, लेकिन वो सारे मारे गए। कंस ने आघा को बुलाया कि आपकी बड़ी बहन पूतन वो कृष्ण के द्वारा मारी, बकासुर का वध भी कृष्ण ने किया था, आप सर्वशक्तिशाली हो, आप कभी पराजित नहीं की जा सकते, आपके परिवार के सदस्यों का बदला ले सकते हो कृष्ण को मार। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप वृंदावन में जाओ। उस दिन अघासुर प्रकट हुआ और वह देख रहा था कृष्ण के गोपों के साथ बड़े आनंद ले रहे, वो ये सहन नहीं कर सका, ये ईर्ष्या का स्वभाव है। एक भक्त जो है पर दुख दुखी, जगह किसी भी दूसरे को दुखी होते हैं तो मेरे दुख, दूसरे का सुख जो है वो मेरा सुख है, ये आत्मा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव। लेकिन जब ईर्ष्या होते सब कुछ उल्टा हो जाता है, दूसरों को विफल होने में मुझे आनंद है, लेकिन उससे मुझे अपने आप के बारे में अच्छा लगने लगता है, और दूसरों का सुख ईर्ष्या होता है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर मेरे कोई, मैं योग्य हूँ इसके। अघासुर इतने ईर्ष्यालु थे, वो ये सहन नहीं कर सके कि कैसे वो मित्र आनंदित है, उसका मन ईर्ष्या से उनका मन जल रहा था, वो सबको मारने के लिए दृढ़ निश्चय, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, वो योगी था, जैसे उसके पास उसने महिमा सिद्धि थी, उसने एक और एक विशाल अजगर का रूप धारण किया, एक विशेष अजगर का रूप धारण किया, और उनका शरीर इतना लंबा था, उनका शरीर का साइज करीब 8 मील था, और अपना मुंह खुला रखा, उसका बड़ा विशाल मुंह था, उसका नीचे होठ जमीन पे था, ऊपर का होठ जो है वो बादलों को स्पर्श कर रहा था। आप बोलोगे यह असंभव है, लेकिन वो आपकी समस्या है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता, कलयुग में हम बहुत सीमित रहते हैं। वो अपने मन में सोच रहे थे, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की भावना होती है, यहाँ पर कृष्ण है, इसने मेरे भाई और बहन का वध किया, अपने भाई और बहन के आदर में उनको पिंड दान करने के लिए, जल अर्पण करने के लिए मैं कृष्ण का वध करूँगा, न केवल कृष्ण और वो सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को सबको मार डालूंगा। सबको मारने के बाद उनके जो माता पिता ग्वाल बालों के बछड़े वो सब, उनके बिना नहीं कृष्ण मित्रक नहीं रह सकते, इसलिए उनके भी मृत्यु, इसलिए एक कार्य के द्वारा मैं पूर्ण रूप से पूरी मानव वृंदावन के पूरी पॉपुलेशन का अंत कर दूं। ये उनकी असुरी भावना थी। अपना मुंह खोला और इंतजार कर रहे थे। ये बलराम जी का आविर्भाव दिवस था, बलराम जी का जन्म दिवस था। उन्होंने कृष्ण को संदेश भेजा कि आज मैं नहीं जा सकता आपके साथ में, क्योंकि मुझे आज ब्राह्मणों को दान के करना है और मेरे मित्र सब करें मेरे जन्म दिवस की तैयारी। बलराम जी उस दिन नहीं थे। उसी समय गोपर अगासुर से देख अगासुर को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गया, कितना सुंदर दृश्य है, ये तो बहुत सुंदर दृश्य हमारे खेलने के लिए बनाया गया है, चलो जाकर खेलेंगे। जैसे वो पास में पहुंचे उसमें से कुछ लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो एक बड़ा सांप के तौर पर, कुछ लोग दौड़ने लगे, एक बोला घबराओ मत, जो भी होगा फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण हमें बचाएंगे। और जैसे हम पास में पहुंचे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, क्या ये कोई विशाल कोई राक्षस, क्या ये अजगर है या कोई मूर्ति है, इसका मुंह इतना बड़ा है जो बादलों को स्पर्श कर रहा है, उसके दांत या पर्वत की चोटियों के समान, उसकी जीभ जो है एक विशाल हाईवे की तरह का है, और जो गंदी जो बदबू आ रही है उनके मुंह से, ये सब इसलिए क्योंकि वो जानवरों का वध करता है, खाता है, इसलिए बदबू आ रही। जैसे वो बातचीत कर रहे थे वो मन ही मन सोच रहे थे, अगर वास्तव में अजगर है, अगर हमको खा जाएगा, कृष्ण ने बचा देंगे, बकासुर को कृष्ण खा गया, कृष्ण ने उसका वध कर दिया, तो आपस में हाथ तो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, भगवान के महिमा का गान कर रहे थे, और अंदर अगासुर के मुंह में प्रवेश के, और सारे बछड़े इतने निर्दोष थे, अपनी पूंछ पर करके आंखों में आंसू भर के मुस्करा रहे थे, वो सब उनके पीछे पीछे कर वो अगासुर के मुंह प्रवेश के, और कृष्ण पीछे खड़े देख रहे थे। कृष्ण जानते थे कि कौन सबसे बड़ा सुरत है कृष्ण। कृष्ण को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके पहले कि कृष्ण रुके, सब लोग मुस्कुराते हुए वो कृष्ण की तरफ ऐसे देख रहे थे और वो ताली बजाते हुए अगासुर के पेट में प्रवेश किया। कैसे समझ सकते अगर कृष्ण सारे ईश्वरों के ईश्वर, क्या क्या चाहता वो नहीं कर सकते थे, रोक क्यों नहीं सकते थे? कृष्ण प्रेम के वश में, कृष्ण अपने मित्रों को रोकना चाहते, लेकिन उनके मित्र वो कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण वो अंदर जाना चाहते थे कि कृष्ण उनको उन दो चीज करेंगे उनको बचाने के लिए, और कृष्ण की इच्छा थी रोकने की, और उनकी इच्छा थी कि अंदर जाने की इच्छा थी, और कृष्ण की इच्छा थी रोकने की, और कृष्ण उनके भक्तों के प्रेम से जीत लिए जाते हैं। और उस समय अघासुर ने अपना मुंह खुला रखा था, वो वेट कर रहे थे कि मेरे भाई और बहन के वध करने वाले कृष्ण का इंतजार कर रहा था। कृष्ण सोच रहे थे कैसे असुरों को मार जाए, मेरे मित्रों मेरे मित्र उसके पेट के अंदर हैं, तो कैसे असुर को मारा जाए, अपने मित्रों को बचाया जाए। कृष्ण ने अपनी योजना बनाई और कृष्ण ने अगासुर के मुख में प्रवेश, मुख और पेट में प्रवेश किया। फिर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। पेट में पूरे अंधकार, अजगर के अंदर शक्ति होती है, उनके पेट में किसी भी जानवर को वो क्रश कर सकते, कृष्ण और उनके मित्र को नष्ट करने वाले थे, और सारे ग्वाल बाल जो सब बेहोश हो गए, ऐसे लग रहा था कि उनकी मृत्यु थी और हवा नहीं थी, उससे भी जाते उस अंधकार में वो कृष्ण को नहीं देख पा रहे थे, वो इतने वीर में थे, वो सब प्राणों को खो बैठे। कृष्ण अपने शरीर को विस्तारित करने लगे, जैसे विस्तारित करे थे, और अगासुर का शरीर को बढ़ाने लगे। अगासुर ने अपने शरीर को बढ़ाया, कृष्ण ने बड़ा किया, अगासुर ने बड़ा किया कृष्ण, लेकिन योगी शक्तियों के स्पर्ध कृष्ण योगेश्वर है, वो सबसे बड़े योगी, सारे योगिक शक्तियां कृष्ण से आते हैं। तो अगासुर कृष्ण को इतना बढ़ा दिए, उसकी श्वास अंदर बाहर जाना बंद हो गई, और उसके श्वास उसका श्वास बंद हो गया, उसने प्राण त्याग कर दिए, और उसके प्राण जो है उसके सिर से निकल गए और आकाश में चले, और एक ज्योति के रूप में उसके प्राण थे और वहीं पर रहे। ये बहुत रुचिकारक है, ये एक ही समय वृंदावन लीला में कृष्ण ने अपने रूप को परिवर्तित किया और अपने आप को एग्जर्ट किया इसी कारण से। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण, वह 7 साल के बालक थे, और बस एक उंगली से गोवर्धन को धारण किया, बाई हाथ की एक उंगली से उठाया। जब उन्होंने विश्वस पुतना को मारा, तो वो छोटे से बालक थे, जब कृष्ण ने अपना मुंह खोल के देखा, जब यशोदा मैया ने हजारों हजारों रस्सियां ली कृष्ण बांधने का, उसकी कमर तो बहुत छोटी सी थी, क्योंकि क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रेम के घनिष्ठता में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन अगासुर के कारण सारे ग्वाल बाल बेछोड़े थे, क्योंकि अगासुर के मुंह में नंद और यशोदा कोई दिख नहीं पा रहा था, कोई उनके साथ नहीं था, तो इसलिए बड़े हो गए, बड़े 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 बन गए, इतने बड़े हो गए, और अंततः अगासुर ने अपने शरीर त्याग कर उसका मुंह खुला रहे। कृष्ण ने अपने गोप ग्वालों पे अपने बिछड़ी दृष्टि डाली और फिर जीवित हो गए, और उन्हें कृष्ण को देखा, फिर सब कुछ छोड़कर चले गए। सब तालियां बजा रहे थे, सब नृत्य कर रहे थे और बाहर आ गए, और अंत में कृष्ण बाहर निकले और सबके सामने ये हुआ, जो अगासुर की आत्मा जो आकाश में इंतजार कर रहे थे वो भगवान के शरीर में लीन हो गई। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये बहुत दुर्लभ है कि एक असुर को मुक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है, सायुज्य मुक्ति, लेकिन कृष्ण ने बहुत सारे असुरों को सायुज्य मुक्ति प्रदान की, पूतना के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके गोलोक वृंदावन में धात्री का स्थान दिया, क्योंकि कृष्ण को दूध पिलाया माता के रूप में, उनके पूरा परिवार कृष्ण को बहुत प्रिय था, अगासुर भी, और सबके सामने अगासुर को सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई, जिसका अर्थ है कि मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, कृष्ण के निकट पार्षद बनना, आध्यात्मिक धाम, जो कृष्ण और नारायण की लीला को हमेशा के लिए आनंद में आनंद लेते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते ये कैसे हुआ, क्योंकि अगासुर ग्वाल बालों को इतना आनंद प्रदान, जब वो उनके अंदर खेल रहे थे, बड़े खुशी मना रहे थे, जो भी असर करे कृष्ण उनको बचाएंगे, क्योंकि वो मोह में थे, वो गोप वालों के साथ संग करे, जो उनके साथ सुख का अनुभव करे थे उस संग के कारण उसका परिवर्तन हो गया था, और आखिरी क्षण में वो उनके संग का लाभ उठा रहा था। इसलिए उनको भगवान के धाम में जगह दी गई। अगासुर भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये मानसिकता कठोर दूसरों के प्रति उदारता दिखाना ईर्ष्या के कारण, ये भी एक भक्ति में आने वाला बड़ा बाद है। जैसे अगासुर असुरों में सबसे महान वर्ग, ये हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जिससे हम दूसरों से हम गलत व्यवहार करते हैं, सेवा के भावनाओं को हमें पहचानना चाहिए। कभी हम कहते हैं कि अच्छा कुत्ता और एक खराब कुत्ता दोनों है, यानी देवी प्रवृत्ति और असुरी जो हमारे अंदर, अगर सूर्य जो है हमारे सबके अंदर ये भाव है घर सुर का, जो हमको प्रेरित करता है। हमारी ईर्ष्या के कारण अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, हम लेकिन भगवान की कृपा से हम मुक्त हो सकते। जैसे ग्वाल बालों को अगर सुर से बचाए और कृष्ण अपने नाम के रूप में है, हमें सीखना चाहिए हम नाम का आश्रय लेना।
अरे
बोलते हैं कि जैसे आप समर्पण करते मैं भी वैसे आदान प्रदान करता हूँ। कृष्ण अगस्त्य के मुंह में आए, कृष्ण अगस्त्य के शरीर में प्रवेश किए और आदान प्रदान अगस्त्य फिर उनके शरीर में आ गए और इस तरह से वो वापस भगवत धाम चला गया। सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित महाराज को बताने लगे ये लीला हुई कृष्ण की कुमार लीला के समय हुआ। कुमार का मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक कुमार लीला कहते हैं और पोगंता लीला होती है 6 से लेकर 10 साल तक। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे अगस्त्य को मारने के बाद उनका शरीर सूख गया, उनके चमड़ा जो है और एक वो प्लेग्राउंड बन गया, उद्यान बन गया मित्रों कृष्ण के मित्रों के खेलने के लिए। लेकिन 1 साल के बाद ही ऐसा हुआ कि ग्वाल बालों ने बताया कि ब्रजवासियों को बताया, 1 साल बाद उन्होंने घर में कथा बताया और उनको ऐसे बताया कि जैसे अभी अभी हुई है। परीक्षित महाराज यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो सकता है ये लीला। 1 साल तक उन्होंने बातचीत नहीं की और जब ऐसे बात की और ऐसे बोला जैसे कि आज ही हुई हो। सुखदेव गोस्वामी ने अगले अध्याय का शुरुआत में समझा था, परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हो आप भगवत उत्तम हो, सारे भक्तों में श्रेष्ठ आप, क्योंकि आप उत्सुकता हैं श्रवण करने के लिए उत्सुक और कृष्ण की लीलाएं का स्वभाव ऐसा ये हमेशा नवीन रहते हैं। अगर आप उसी लीला को बार बार 100 लाखों बार भी आप सुनेंगे तो भी, लेकिन असंख्य बार भी ऐसे 100 quadrillion बार भी आप सुने वही लीला को आप बोलते रहे, अगर आप वास्तव में भक्ति का आस्वादन कर रहे हर बार आप सुनोगे और ज्यादा मीठा और नवीन लगेगी आपको, क्योंकि कृष्ण नव यौवन हमेशा नवीन है। उसी तरीके से उनका नाम भी फ्रेश, उनका रूप ये टेस्ट ये परीक्षा की हम भक्ति कितनी जागृति कर रहे हैं। जब हम महामंत्र का जप कर रहे हैं, कितने नामों का हम जप करते हैं। रूपक गोस्वामी कहते अपना अनुभव बताते हैं कि कितना अमृत है कृष्णा में, इतना अमृत है जब ये 2 अक्षर मेरे जीवा पर नित्य करते हैं तो मैं लाखों लाखों जीवा चाहता हूँ। और जब वो ध्वनि कृष्ण की ध्वनि मेरे कानों में प्रवेश करते हो मैं इतना उत्सुक होता मैं लाखों 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 जीवा कान लाखों लाखों कान चाहता हूँ। और जब वो मेरे हृदय में आते हैं तो मेरे हृदय को जीत लेते हैं, चेतना को जीत लेते हैं। ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हमेशा हमेशा शुद्ध रहते हैं। आपको अगर एक ही कहानी मालूम है कृष्ण की, और कोई आप उस कहानी को शाश्वतता के लिए बोल सकते हैं और कभी आप बोर नहीं होंगे और ज्यादा मधुर 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 होते रहे। अगर आप वास्तव में कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर परीक्षित महाराज उन्होंने व्रत रखा 7 दिन 7 रात और गंगा के किनारे बैठे और पानी भी नहीं पी रहे, प्रसाद भी नहीं खा रहे। वो कृष्ण के लिए कथा का अमृत का आस्वादन कर जैसे तरीके में परीक्षित महाराज के पहले मैं जब मैं शमिक ऋषि के दो आश्रम में था, अब मैं पहले मैं प्यासा था तो बहुत दुखी था, लेकिन अब जो अब हरि कथा अमृत का कृष्ण की महिमा सुन रहा हूँ मेरे कानों में मेरे हृदय में प्रवेश कर, मैं तो इतना मैं अंत नहीं चाहता। मुझे और कोई चीज की इच्छा नहीं, कोई खाने की भी इच्छा नहीं, नींद की भी इच्छा नहीं। शुकदेव गोस्वामी समझाते जो व्यक्ति सुन रहे हैं जब कृष्ण को सुनने में उत्सुक है तो वो बोलने वाले को शक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण की बोलने की शक्ति मिलती है, क्योंकि कृष्ण जो है वक्ता के हृदय में देखते हैं कि आप कितने उत्सुक हैं सुनने के लिए, तो कृष्ण वक्ता को और शक्ति देते हैं, ज्यादा उत्साह से बोलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। कभी कभी हरि कथा सुनने वाले बोले वाले ज्यादा सुनने वालों को शक्ति मिलती है, वो प्रेम का आदान प्रदान है। शुकदेव गोस्वामी बोले कि मैं आपका सब समझाऊंगा क्योंकि आप उत्सुक सुनने के लिए उतने उत्सुक हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा, और कोई रहस्य नहीं और एक और ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो गुरु शिष्य से छिपाने का प्रयास करें। अगस्त्य मुक्त होने के बाद कृष्ण अपने मित्रों को यमुना के किनारे पर लेकर आए और सब बैठे। कृष्ण ने कहा यह बहुत सुंदर स्थान, हमारी लीला आलिया के लिए बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर रीति है, इतनी नरम है, आज यमुना के इस भाग में और बहुत सुंदर कमलों के जो है दाने जो सब जगह ब्रज में उसके घर आपको सुनाई नहीं पड़, सब भंवरों की आवाज जा रही, ये कमल के लिए उत्सुक है, और तो तोते की आवाज कोयल की आवाज सुनाई पड़। हम यहीं पर दोपहर का भोजन करें, सारे गोप कृष्ण के आसपास बैठ गए। शुकदेव गोस्वामी कह रहे कृष्ण ऐसे थे कि कमल के फूल के बीच भाग के था और सारे ग्वाल बल उनके उनके चारों ओर एकत्रित उनको सर्कल कर रहे और इतने सारे थे, और एक फूल कृष्ण दिखाए, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति अपने भक्तों को स्नेह दिखाने के लिए, हालांकि वो चारों तरफ से सर्कल में थे, हर एक गोप को उनको लग रहा था कि न केवल सोच रहे थे, उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरी ओर ही देख रहे हैं। ये कृष्ण बहुत सारे गोप और मेरे ज्यादा कुछ नहीं, कृष्ण मेरे से इतना प्रेम कर सिर्फ मेरी ओर देख रहे और हजारों हजारों ग्वाल बाल हैं वो सब सारे ग्वाल बाल जैसे भंवरे के समय कृष्ण के मुख कमल से अमृत का पान कर रहे हैं। इससे बढ़कर ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। जब प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था कृष्ण और ग्वाल बालों में हो रहा था और एक सरकाजा उसने अपने टिफिन से थोड़ा खिलाकर खाने लगे, कृष्ण को कहने लगे ये बहुत अच्छी है, आप एक टेस्ट करिए। अपने मुंह से निकाल के कृष्ण को देने लगे और कृष्ण उसको ट्राई करते हैं और दूसरे मित्र को देते। इस तरह से आपस में सब बांट रहे थे और सब सबके सुंदरता का वर्णन कर रहे, मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। अब भंवरा आने लगा और कृष्ण बबल को बोलने लगे भंवरे को, तुम क्यों आए मुझे पता है, आप मधुमंगल से मिलने के लिए आए, लेकिन जान लो मधुमंगल से सावधान रहो। लेकिन सावधान रहना, अगर ब्राह्मण को मारना बहुत पाप है। जब कृष्ण ऐसे बोलने लगे जो जैसे सब हंसने लगे, चौदह जगत में सब ग्वाल बाल हंसने लगे। जो भी कृष्ण बोलते वो हृदय को प्रसन्नता प्रदान करना, क्योंकि इतने प्रेम स्नेह के साथ कहा जा रहा है। कुछ बंदरों को देख और कैसे मजाक करने लगे, बंदरों से बात करे, हे बंदर जो अच्छा पक्ष है वो तो उसके लिए बताओ क्या। सब हंस रहे थे और कृष्ण भी हंस रहे थे। एक के पास समोसा था, उसका आधा भाग किया, सब्जी वगैरह सब निकाल दिया, उसमें अच्छी तरह से फूल के पंखुड़ियां डाली समोसे के अंदर, उसके जगह बांध कर दिया पैक करने के लिए और उस समोसा दूसरे मित्र को दिया। बहुत मेरे माँ ने बनाया, बहुत इतना सुंदर है। और ये अजय खाने लगे हुआ और यस्मिन फूल सुगंध अच्छे होते लेकिन खाने में टेस्ट नहीं होते, टेस्ट नहीं, और एकदम कड़वे बन गए। ऐसे में बनाने लगे कि जब बहुत कड़वा खाने के बाद और सारे ग्वाल बाल कहने लगे, सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। जिसने खाया वो क्रोध के कारण दिव्य क्रोध का सबको, जिसने समोसा बनाया उसकी पिटाई करने लगे, सब हंसने लगे। ये प्रेम के लीला एक गोपाल दूसरे कृष्ण से कहने लगे, मेरी मिठाई जो है आप आंख बहुत खोलो, मैं आपको कृष्ण अपना मुंह खोला और कृष्ण के मुंह में फूल डाल दिया और सब हंस रहे थे, हंस रहे थे और कृष्ण भी हंस रहे थे। उस समय कृष्ण ने जब अगासुर का वध कर दिया, देवता भी अगासुर का इतना डरते थे, वो रोज पूजा और मुद्रा सब कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से अगासुर जल्दी मर जाए। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अगासुर को मारा और अगासुर को मुक्ति प्रदान की जो देवता भी नहीं प्राप्त करते, वो बहुत अच्छी तरह से बड़ा उत्सव मनाने लगे। और ब्रह्मा जी जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने अगासुर की मुक्ति का देखा, सारे ब्रह्मांड में उसकी मनाई जा रही, ब्रह्मा धरती पे आए, ये कृष्ण ग्वाल बाल क्या, वो जानते थे कि कृष्ण भगवान है। हर एक सबको पता होता है हृदय से कि कृष्ण भगवान है, लेकिन माया की जो ढक्कन है वो जीवात्मा को विमोहित कर देती है। ब्रह्मा जी और देवता और कृष्ण को देख रहे, वैदिक शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का एक नाम है यज्ञ भूख, जिसका मतलब है कि वो यज्ञों में आनंद लेते हैं। और देवता जब बड़े बड़े ब्राह्मण या ऋषि हैं वो यज्ञ करते हैं, शुद्ध घी से, तुरबी गाय से बनाए हुए घी से मंत्रों के साथ अर्पण किया जाता है, रीति रिवाजों के साथ कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर वही कृष्ण है ग्वाल वालों के मुख से जो प्रसाद को खा, ये अचिंत्य है। क्या भगवान ऐसा कर सकते, ये तो अचिंत्य। ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। वृंदावन लीला इतनी मधुर, इतनी घनिष्ठ थी, इतनी स्वाभाविक थी कि भगवान जो सर्वशक्तिमान जो जीत लिए जाते, जो एक साधारण बालक की तरह कृष्ण खेल रहे, एक छोटे बालक की तरह। जैसे वो प्रसाद खा रहे थे, मजाक कर रहे थे, बछड़े थोड़े दूर चले गए, वो ताजे घास की तलाश में थोड़े दूर गए। और जब सब ग्वाल बालों ने उन्होंने देखा सब बछड़े चले गए, वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि बछड़ों से प्रेम करते, वो उनके लिए जिम्मेदार थे। कृष्ण ने कहा कि आप सब यहाँ पर, आप यहाँ पर लीलाओं का आनंद लो, मैं जाऊँगा अपनी शक्ति से, तो बछड़ों को मैं वापस लेकर आऊँगा। कृष्ण चले गए बछड़ों की खोज में, और बछड़ों की खोज में कृष्ण निकल पड़े और उनको नहीं ढूंढ पाए। वो सब जगह जंगल में और पर्वत में और गुफाओं में सब जगह पर ढूंढ रहे थे। और वो जब लौट कर आए यमुना के किनारे, और सारे गोप भी अप्रकट हो गए थे, दिखाई नहीं पड़ रहे। कृष्ण अपने खेल में मुद्रा में सोचने लगे कि वहाँ कहाँ पर, हाँ कहाँ पर गए, शायद ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया। भगवान ब्रह्मदेव ने सारे बछड़ों और गोपियों को चुरा लिए, उनको निद्रा में डाल और छुपा दी एक गुफा में, एक जगह पर छिपा दी जिससे कोई भी उनको नहीं प्राप्त कर सके। इधर सूर्य जो है अस्त हो रहा था, और वो समय था कृष्ण और उनके सारे मित्रों को वापस लौटने का समय हो रहा था। कृष्ण सोच रहे थे कि अगर गाय माता और अगर माताएं को, अगर बच्चों को वापस लेंगे, ग्वाल बाल की माता क्या सोचेंगे। कृष्ण ने अपनी चिंतन शक्ति से, अपने व्यक्तिगत रूप से ऐसे रूप प्रकट, सारे अनंत बछड़े सारे गोपों का भी रूप प्रकट किया, अचिंत्य रूप, हर एक ग्वाल बाल जो कृष्ण के ही समान थे। और कृष्ण ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया, वैसे ही जैसे उनका शारीरिक रूप था वैसे ही प्रकट, वैसे ही कपड़े पहने, ऐसे ही आभूषण पहने, वैसे ही पर्सनैलिटी, वैसे व्यवहार था, वैसी आवाज, वैसे ही भैंस के सिंह और हर एक बछड़े एकदम बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। कृष्ण सब चीजों के स्तोत्र हैं। कृष्ण की अचिंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वृंदावन वृंदावन में कैसे करते हैं, वो इतना मधुर इतना आकर्षक है कि हमारा हृदय पिघल जाता है, हमारे प्रेम को जागृत करता है। कृष्ण जब सारे ग्वाल बालों के रूप में वो अपने आप के साथ खेल रहे थे, कृष्ण अपने बछड़ों के साथ कृष्ण अपने बछड़ों को बुला रहे थे, सब दौड़ रहे थे और कृष्ण के प्रेम के साथ आदान प्रदान कर, जब कृष्ण अपनी मुरली बजाती सारे सारे ग्वाल बजे सब नृत्य कर रहे थे, सब अपना सिंह बजा रहे थे, सब दौड़ रहे थे और वो सब वृंदावन लौट कर आ गए। जब उन्होंने देखा माताओं ने, उनका बहुत ही विशेष अनुभव, उन्होंने बच्चों को गले लगाया, उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु आए, उनको स्नान कराए, उनको कपड़े पहनाए, उनको आभूषण पहनाए, उनको अच्छे उनको चंदन लगाए, उनको विश्राम करवाया, उनको लंच प्रसाद खिलवाया। बहुत ही रहस्यमय चीज हो जाती है। सारे माँ जो है वो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम कृष्ण से करते थे, अपने बच्चों से प्रेम करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रेम बच्चों से करते, लेकिन वो कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते और ये अचिंत्य है। और उसमें से हर एक जो है अपने हृदय में उन्होंने पूजा की, आराधना की, यशोदा और नंद के सौभाग्य के, कोई ईर्ष्या की भाव नहीं, स्पर्धा की भाव अपने हृदय में। उनकी इच्छा थी कृष्ण से प्रेम करने की और वो प्रेम जो नंद और यशोदा का तरह वो अनुभव करने लगे, और कृष्ण जानते थे उनके हृदय में इच्छा है और साथ साथ ब्रह्मा को विमोहित करने के साथ साथ उन्होंने हर एक माता वृंदावन के एक अवसर प्रदान किया कि व्यक्तिगत रूप से उनको मात्र वात्सल्य प्रेम का अनुभव करने के, जो यशोदा माता का अनुभव होता था वो सबको मिले, सारे पिता को वो नंद महाराज के प्रेम का अनुभव हुआ। और जब सारे बछड़े अपनी माता के पास वो भी कृष्ण से प्रेम करने के लिए उत्सुक, यशोदा मैया के थे और कृष्ण जो है बछड़े बन गए थे, वो माता बछड़े देखकर उनको पता नहीं था कि वो कृष्ण, और माताओं गाय जो माता थी वो अपने बछड़ों के प्रति प्रेम इतना बढ़ने लगे, वो अपने बछड़ों को चाटने लगे और ऐसा लग रहा था कि वो खा जाएंगे उनको, और उनके थनों से दूध बह रहा था और छोटे छोटे कृष्ण उनके थनों का दूध पी रहे थे। और फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ जाते भाईचरण और उनकी लीला कर हर एक ग्वाल बाल जो है कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर, और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और वो वही लीला फिर से कर रहे थे। और वो जो घर लौट कर आते और ये सुंदर अनुभव एक साल तक ये अनुभव रहा। वृंदावन चिंतामणि धाम जा रहे हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हर एक माता जो है गोपियां जो है वो सब कृष्ण को अपने एक साल तक कृष्ण को अपने बेटे के रूप में कर और गर्भनिता के अनुसार उस समय अत्यंत रूप से कृष्ण के अरेंजमेंट से जो नौजवान गोपी है गोपों से विवाह किया और यंग गोपी जो है कृष्ण को पति के रूप में चाहते उनको कृष्ण एक साल के लिए कृष्ण के पति के रूप में रहे। जय जब कृष्ण ने हरेक के रूप में प्रकट किया एक साल होने के पांच या छह दिन पहले बलराम और सारे कृष्ण सारे बछड़े वे सब गोवर्धन के पास में थे और गाय जैसे पर्वत के ऊपर जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो इतने प्रेम से इतने विवल हो गए वो दौड़ते हुए पर्वत जैसे उनके खाली दो ही पैर हैं वो तेजी से दौड़ रहे थे और जमीन बहुत खराब होने के कारण ग्वाल बाल डर गए कि ये गाय जो है इनके पैरों में चोट लग सकते हैं और उनका बछड़ों के प्रति ग्वाल बाल गायों का इतना प्रेम बढ़ रहा था उनका दूधों का दूध बढ़ता जा रहा था और वो और उनके थनों से जो है दूध बह रहा था और जब अपने बछड़ों के पास में पहुंचे उनको चाट रहे थे और बछड़े इतने उत्सुक थे कि उनके माता के दूध के लिए उनके दूध को और कृष्ण सारे बछड़े जहाँ स्वयं कृष्ण थे और बलराम जी ये देख रहे थे ये सब अचिंत चीज कि छोटे बछड़े भी थे जो बड़े बछड़े हैं और बड़े गाय जो है बड़े बछड़ों को ही सारा दूध दे रहे थे छोटे बछड़ों को कुछ नहीं दे रहे थे और बलराम जी सोचने लगे एक साल के लिए मैं ये समझ नहीं पाया सत्य को सब माता है जो गोपों की माता है और जो बछड़ों की माता है मैंने कभी देखा नहीं कि उनको बच्चों से इतना प्रेम हो जैसे ऐसे प्रेम जैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं वैसे बछड़ों से प्रेम कर रहे हैं ये कैसे हो सकता है कृष्ण की योग माया शक्ति है जब वो अपनी लीला की मिठास को बढ़ाने लगते हैं तो बलराम जी को भी ढक देते हैं जो उनसे अभिन्न है उनके प्रथम विस्तारित स्वरूप है और बलराम जी सोच रहे हैं ये कैसे हो रहा है कैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ ये क्या कारण है और उनको साक्षात्कार हुआ तो निष्कर्ष ये तभी संभव है कि जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर एक बछड़े और ग्वाल बाल बन के अपने माताओं के और बछड़ माता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने कृष्ण से पूछा मेरे को बताओ ये कैसे हो रहा है ये कैसे हो रहा है ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए और कृष्ण ने सब कुछ समझा दिया बलराम जी को कि कैसे ब्रह्मा जी ने चुराए और उस समय पांच या छह दिन बाद जब एक साल बीत चुका था फिर से बलराम जी थे बलराम जी नहीं थे ब्रह्मा देखना चाहते थे कि मैंने कैसे वृंदावन में भ्रम पैदा किया ब्रह्मा जी का एक क्षण धरती के लना से एक वर्ष हो जाता जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए देखा कि सारे गोप और सारे बछड़े जब मैंने पूछा कृष्ण से कैसे संभव उन्होंने मैंने सबको सुलाया था और वो ये कैसे है कि मैंने सबको सुलाया था और वो गए देखा कि ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये वास्तविक गोप है, वो असली गोप कौन से हैं, क्या वो जमीन के अंदर है वो असली गोप है या ये कृष्ण है, वो समझ नहीं पाए। जितने ज़्यादा बुद्धिमान हम होते हैं उतना विमोहित हो जाते हैं, जब नहीं समझते ज़्यादा विमोहित हो जाते, सरल चीज हम नहीं समझ पाते। जब जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिनको बहुत तर्क वितर्क, जब वो नहीं समझ पाते कुछ तो बहुत विमोहित हो जाते। वो ये चाहते थे जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो देखना चाहते थे वृंदावन में क्या कर सकता हूँ। जब उन्होंने देखा, जब वो बिल्कुल विमोहित हो गए, ये कैसे संभव है। और जैसे जैसे वो भ्रमित हो रहे थे ब्रह्मा कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रेम के प्रति, और ज़्यादा उनको मोहित किया, और ब्रह्मा जी की आँखों के सामने हर एक छोटे बछड़े जो और ग्वाल बाल सबने जो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप प्रकट किया, चार हाथ के द्वारा, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण, और सबका कलर जो है एक बादल के समान, और आभूषण थे सबके पास, कौस्तुभ मणि थे, और श्रीवत्स का निशान था वक्षस्थल पर। और जब कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते भक्तों के ऊपर, कृष्ण क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अब अनंत नारायण है यहाँ पर जो मेरे सामने खड़े, और हर एक नारायण के पास, और उन्होंने सारे जीवात्माओं को देखा, और उन्हें ब्रह्मा और शिव और नारद और देवताओं को देखा, और मानवों को और पशुओं को देखा। उन्होंने सारी शक्तियों को देखा, प्रकृति के गुणों को देखा, और इतने सारे सर्कल देखे, हर एक भगवान के रूप में इतने सारे रूप को देखा जो मंत्रों का गान कर रहे थे, और इस रूप में ब्रह्मा जी वो बिल्कुल बेहोश से हो गए, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से विमोहित हो गए, पूर्ण रूप से विजित हो गए, वो बिल्कुल निस्तब्ध हो गए। उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं हूँ। वो ये सोच रहे थे कि मैं इतना महान हूँ कि वो कृष्ण के साथ मजाक कर सकते हैं, और अब उनको समझ में आ गया कि उनकी शक्तियाँ जो है जैसे है कि छोटे से जो बर्फ के जैसे जुगनू जो है, रात्रि के समय जुगनू बहुत प्रकाशमान देखते हैं, या बर्फ के टुकड़े या जुगनू के समान, जैसे जब रात्रि के समय जब गीता नगरी में था, मैं ब्रज लीला और एक वीर प्रभु के साथ जब मैं मदद कर रहा था, भक्ति तीर्थ महाराज को मैं सेवा कर रहा था, जब मैं रात के बल्ब को देखता तो बहुत सारे बल्ब दिखाई पड़, सब चमक रहे थे, ऐसा लगता था कि आकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत बताया गया कि ब्रह्मा जी की तुलना उसके साथ की गई, रात के अंधकार में एक जुगनु सोचता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा हूँ, लेकिन जब सूर्य प्रकट हो जाता है, जो प्रकाश है, मैं तुच्छ हूँ, कृष्ण को शक्ति देते हैं वो दिन के समय, तो कितना भी प्रकाश कर रहे, कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता। तो हम अभिमान हो सकते हैं जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। कृष्ण सूर्य के समान, माया अंधकार के समान, जब मिथ्या अहंकार जो है, जब कृष्ण को भूल जाते हैं अंधकार, तो इससे हम जान सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमारी क्या स्थिति है। कभी कभी हम चाहते हैं, अभिमान करना चाहिए, दूसरों के प्रति महानता दिखाना चाहिए, लेकिन जब कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो जो कृष्ण भावन व्यक्ति है वो जानते हैं कि हम अज्ञान में, जैसे जुगनू जो है अपने प्रकाश को दिखा रहा हूँ। जब हम समझ जाते हैं कि अनंत सूर्य के अनंत को गुण और लीलाओं को समझ, तो हम कृष्ण की अनंत शक्ति में हम आनंद लेते, हमें अपने आप की अभिमान नहीं करना पड़ता, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन शक्ति, हम जब सुखी हो जाते हैं कि हर स्थिति में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं कि हम श्यामानंद पंडित की तरह जो खाली झाड़ू लगाने की सेवा करनी चाहे, तो कृष्ण अगर वो चाहते, कृष्ण चाहते हैं कि हम बर्तन सफाई कर सब्जी काटने के लिए, तो कृष्ण चाहे कि हमें हजारों लोगों को लेक्चर दे और कीर्तन लीड करने के लिए कहें और ये मैनेज करने के लिए कृष्ण शक्ति दें। जो भी हम करें, कृष्ण हमें दासों के दासों के दासों को बनने के लिए, हम किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, वही ज्ञान है। ब्रह्मा जी समझ गए, मैं पूर्ण रूप से तुच्छ। शिला प्रभुपाद जी संदर्भ में कहानी बताते हैं, बहुत समय बाद जब कृष्ण द्वारका में थे, ब्रह्मा जी उनसे मिलने के लिए आए और दरवाजे रखने वाले ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले मैं ब्रह्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कृष्ण से मिलने आया हूँ। और द्वारपाल ने पूछ उनको बताया, कृष्ण को बताया और कृष्ण पूछे कि कौन ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। बोला मैं चार सी वाला ब्रह्मा हूँ, तो बोला ठीक अंदर आ जा। ब्रह्मा जी ने पूछा ये ब्रह्मा के प्रश्न के पूछ, तो भगवान बोला जानना चाहिए। और कृष्ण ने बहुत सारे ब्रह्मा कर, हजारों ब्रह्मा आ गए और हर एक ब्रह्मा के इस ब्रह्मा से बहुत बड़े थे। चैतन्य चरितामृत बताया कि हमारा ब्रह्मा जो बाकी सब ब्रह्माओं के सामने जैसे एक मच्छर जो हाथियों के में एक मच्छर कैसा होता है। और कृष्ण ब्रह्मा जी को बोले जब अपनी सेवा करो, हम सब हम जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ब्रह्मा इतने प्रभावित इतने विमोहित हो गए, सब जीवात्माओं को देख रहे थे अनंत मात्रा में, अनंत विष्णु को देखकर अचानक ये बिल्कुल वो स्तब्ध हो गए, बेहोश हो गए। फिर कृष्ण ने अपनी योग माया का ढक्कन लिए छीन लिए और सारे विष्णु तत्व सब अप्रकट हो गए और स्तब्ध रह गया वो। फिर कृष्ण वैसे ही खड़े हुए थे, एक साल पहले हाथ में दही और चावल और फूट हाथ में लिए, अपने हाथ में बछड़ों की खोज कर रहे हैं, वही दृश्य फिर से प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी सब जगह पर ढूंढने लगे, सारे वन में ढूंढने लगे और उन्हें देखा, क्योंकि अभी वो अब अहंकार से मुक्त हो गए थे, अब वो वृंदावन को देख सके, अब वो देख सके। उन्होंने हर एक पेड़ को कल्पवृक्ष के रूप में देखा और उन्होंने यमुना नदी को देखा, आध्यात्मिक जगत की नदी, और उन्होंने प्रेम के इतने लक्षण देखे और पूर्ण चेतना वृंदावन के हर कण में और वृंदावन की धूल के कण को चिंतामणि मान रहे, और उन्होंने ऐसा देखा कि कोई ईर्ष्या नहीं थी, वो प्रेम के कारण हर एक जीव जो है एक दूसरे के साथ भी प्रेम करने लगे। जंगल में भी ये शेर और हिरण एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, जहाँ पर कृष्ण भावना होती है भाई दूसरे के साथ प्रेम की भावना हो सच्चे आध्यात्मिक स्तर के ऊपर, ये एक परीक्षा है हमारी कृष्ण भावना अमृत। अगर आपस में स्पर्धा कर रहे हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना है, तो हम छोटे से बल्ब के समान जगनू के समान अंधकार के कारण हम लड़ रहे हैं, कि ब्रह्मा जी प्रकाशमय थे, ब्रह्मा जी का अहंकार दूर हो गया और अब वास्तव में समझ सके, वृंदावन को अपने असली रूप में देख पाए। पहले वो वृंदावन को देख नहीं पाए थे, पहले वो सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी वृंदावन अपने आप को प्रकट हो गया, आध्यात्मिक धाम के रूप, चिंतामणि धाम के रूप, सबसे बड़े प्रेम का स्थान। वो बिल्कुल नशे में मग्न हो गए, वो देख रहे थे पूर्ण साक्षात्कार के परम सत्य, सारे अवतारों के स्तोत्र, जो सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले, अपने अपने मूल स्वरूप में वो स्वयं कृष्ण है, एक ग्वाल बाल के रूप में। अब वो 5 साल की उम्र से 6 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रह्मदेव अपने हंस वाहन से नीचे आए, अपने दंडवत प्रणाम किए। श्रील प्रभुपाद जी समझते एक दंडे की तरह प्रणाम करना है, श्रील प्रभुपाद उन्हें खाली बोलना नहीं, खाली दंडवत बोलना नहीं, करना चाहिए, और खाली शरीर से नहीं। कभी हम भक्तों के साथ रहते, अब कभी दंडवत करते हैं, क्योंकि कभी तुम दंडवत करते हैं कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, शरीर मन और वचन जो वो अपने आप को नम्र बने, भगवान को हृदय में देखते हुए सबको प्रणाम कर। ब्रह्मा जी नीचे आए और एक लकड़ी की तरह नीचे गिर पड़े, वृंदावन भूमि में गिर पड़े। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि अधिकतर समय देवता जो है जमीन को स्पर्श नहीं करते, लेकिन सारे राजाओं के, सारे देवताओं के राज वो वृंदावन की भूमि में गिरे पड़े थे और अपने सारे सिरों को कृष्ण के चरणों में की, और वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे अभिषेक की तरह। कृष्ण के सुंदर स्थान पर प्रणाम कर रहे थे, ब्रह्मा उठे फिर और उन्हें सुंदर प्रार्थना अर्पण किए। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, कृष्ण एक ग्वाल बाल के रूप में ब्रह्मा जी को तुच्छ समझे कि कौन है, मैं ग्वाल बाल, मैं अपने बछड़ों को ढूंढ रहा हूँ कि आप क्यों आए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। और ब्रह्मा जी कहने लगे, उन्होंने कृष्ण की सुंदरता का गुणगान किया, उनका वर्ण जो है बादल के समान सुंदर, मोर का पंख, गुंजमाल, कौस्तुभ मणि, श्रीवास का छेना नहीं, सारी सुंदरता के स्रोत, सब चीजों के स्रोत उनको आकर्षित कर रहे थे। और ब्रह्मा जी कैसे बार बार प्रकट होते अपने अहितु की कृपा से, कितने तरीकों से हमारे हृदय को आकर्षित करें। और कृष्ण ने कैसे वृंदावन का दृश्य प्रकट किया हमारे मन को आकर्षित करने के लिए, भौतिक आसक्ति और दुखों को दूर करने के लिए भगवान ने रूप प्रकट। और कृष्ण इतने दयालु हैं उनके प्रति, उसके अहंकार को दूर करने के, उसको भ्रम से दूर करने के लिए कृष्ण ने इस सुंदर लीला को प्रकट किया। तत्ते अनुकंपा से समीक्षमानो, जब कृष्ण हमारे भक्तों को चुनौती कर, अगर वो भक्त हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कृतज्ञता के साथ और नम्रता को, और कृष्ण और ने तकलीफें आने पर भी वो व्यक्ति जो है उसको परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी को सब भूल गए, वृंदावन की परम महिमा को जान लिया और अपनी प्रार्थना में समझाने लगे कृष्ण को कैसे। कुछ लोग आपको ब्राह्मण के रूप में आराधना करते हैं, कुछ आपको वैकुंठ के रूप में पूजा करते हैं सब चीजों के स्रोत के रूप में, और कुछ आपको योगिक तरीके से जानते हैं, आपने अपना सब इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं और शांत होने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर वृंदावन गोप और गोपियां जो है, और गाय और बछड़े जो है, वो आपसे घनिष्ठता से प्रेम करते हैं, एक मित्र के रूप में, बालक के रूप में, प्रेमी के रूप में, और कैसे घनिष्ठ रूप से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का साक्षात्कार था कि ये जो बाल गोपाल का जो रूप है वो सब चीजों का स्रोत है और ये परम सत्य है, और गोपाल से प्रकट संबंध प्राप्त करने का तरीका है सच्चा भक्ति, सच्चा प्रेम। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मैं अपने ऊंचे पद को स्वीकार करूं, जो कि बिभी मोहित का इतनी शक्ति का फल। और उन्होंने प्रार्थना की कि मैं एक जन्म लूं, अगला जन्म प्राप्त करूं, कोई भी रूप में, किसी भी जगह पर, वृंदावन में, किसी भी रूप जगह में, किसी भी रूप में। विशेष करके उसने प्रार्थना की कि मैं एक पत्थर बन जाऊं, और मैं तो घास के तिनके के रूप में जन्म लूं, जो आशा करते हुए कि जो भी कृष्ण के जो दास या दासी या वृंदावन के भक्त जो हैं, वो अपने चरण मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। क्योंकि अगर इन किसी के बंदवासियों के चरणों के धूल मेरे सिर पर आएगी, तो मेरे को आशीर्वाद प्राप्त होगा कि किसी तरीके से मैं जो उनके अंदर जो प्रेम है वो मैं अनुभव कर पाऊंगा। ब्रह्मा ने चाहता था कि कृष्ण के चरण मेरे सिर के ऊपर, उन्होंने प्रार्थना की कि राधा के चरण के, उन्होंने प्रार्थना की बछड़े और गाय और गोप और जो गोपों के सेवक हैं या मोर, किसी एक का भी उनके चरण मेरे सिर पर रहे, जैसे कि मैं प्रेम का भाव, ब्रजवासियों का भाव को स्वीकार कर सकूं। इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी ये प्रकट करते हैं अपनी श्रेष्ठता, वृंदावन धाम की श्रेष्ठता प्रकट की। सनातन गोस्वामी समझाते हैं ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति नहीं थी, कृष्ण के बछड़ों को चुराने की शक्ति नहीं थी, जैसे रावण के अंदर की सीता का हरण करने की शक्ति नहीं थी। भगवान राम के हरणमेंट से उन्होंने एक माया सीता का निर्माण किया जो कि चुरा ली गई थी। उसी तरीके से जब ब्रह्मा जब बछड़ों को चुराने के लिए आए, जैसे ही वो आए, कृष्ण ने योग माया से सच्चे बछड़ों को छुपा दे गोपों को छिपा दिया था। और साथ साथ और माया बछड़े और माया गोप ग्वाल बनाए और ब्रह्मा जी ने उनको चुराया। और सच्चे असली जो बछड़े जो थे, असली गोप थे, वो वहीं रहे जहाँ पर, लेकिन किसी के द्वारा योग माया के पर्दे के कारण किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को समर्पण कर दिया कि मैं घर का तिनका बनूं वृंदावन, फिर कृष्ण से माफी मांगी और कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। कृष्ण हाथ में बस दही और चावल लेकर बैठे थे और इधर उधर देख रहे थे। ऐसा करने में लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए मैं घास का तिनका बनने के लिए योग्य नहीं हूँ। कृष्ण चाहते हैं कि मैं ब्रह्मा को वापस अपने कर्तव्य करूँ। हो सकता है किसी दूसरे जन्म में मैं घास का तिनका बन सकूं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परिक्रमा की, 3 बार अपना प्रणाम किया और फिर वो निकल पड़े। कृष्ण ने फिर योग माया का पर्दा हटा दिया और जो मूल जो बछड़े थे, जो जो घास खा रहे थे, वो फिर से प्रकट हुए। कृष्ण सबको लेकर गए, वापस लेके गए यमुना किनारे और सारे ग्वाल बाल जो मृत थे उनका इंतजार कर रहे थे। और कृष्ण जब लौट कर आए तो ग्वाल बाल सब इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि कृष्ण आप कैसे हो सकते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे लौट कर आ गए। आप सब बछड़ों को ढूंढने के लिए एक क्षण भी नहीं हुआ अभी और आप लौट कर, हमने कुछ आपके अनुसार हम कुछ खाने से, आप जल्दी लौट कर आप हमारे साथ आकर प्रसाद ग्रहण करिए। विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि 1 साल बीत चुका था, बच्चे बड़े हो चुके थे, बछड़े भी थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन उनके लिए एक योगमा की शक्ति से उनको लगा कि एक ही क्षण बीत गया। और सारे ब्रजवासियों के लिए उनके लिए 1 साल बीत चुका था। यहाँ पर कृष्ण अपने प्रेम को बढ़ा रहे थे और कृष्ण साथ में बैठे अब ग्वाल बालों के साथ। और फिर से आनंद देने लगे, हंसने लगे, मजाक करने लगे, मुस्कुरा रहे थे, प्रेम का आदान प्रदान कर। दिन में खेलते रहे और फिर वृंदावन लौट कर आ गए। गोपाल सब उन्होंने अपने घर में वापस लौट कर रहे, सब माता पिता ने इनका स्वागत व्रज में लौट कर रहे, सारे सब ग्वाल बाले कृष्ण की महिमा गा रहे थे। कृष्ण ने एक नाम अगासुर नाम के असुर का आज उसके और सारे ब्रजवासी बोले बताओ बताओ क्या हुआ, और फिर से बताने लगा कुछ घंटों पहले ही हुए, इतना बड़ा था और वो हमारे पास आया और कैसे मुक्त किया, और लौटते समय और देखा उनके शरीर को अगस्त का शरीर सूखा हुआ था। जब परीक्षित महाराज ने कहा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करे, ये मानव स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि इस भौतिक भाव में जब हम अपने शरीर मानते हैं, हमारे शरीर हम अपने आप को शरीर से पहचानते हैं, हम किससे प्रेम करते हैं, हम शरीर के आधार पर ही प्रेम को प्रकट, तो हर एक व्यक्ति के लिए शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम समझ सकते हैं कृष्ण सारे आत्माओं के स्रोत हैं, वो सर्वात्मा है, हर एक आत्मा जो कृष्ण का ही अंश है। जब गोपियां और वृंदावन के वासी हम किसी से भी प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा कृष्ण से प्रेम है, इसीलिए हम हर कृष्ण ने सारी शक्तियां हमारा सारा प्रेम प्रकट किया जा सकता है हमेशा के लिए। और कृष्ण के इस मिठास के कारण हम दूसरों के लिए प्रेम होते और हर एक के लिए हमेशा के लिए हम अपने आप की पहचान कर सकते हैं कृष्ण के साथ हमारे संबंध में। ये अवस्था जन्म मृत्यु से परे है, और इस अवस्था में जो चिंता और दुख जो है वो भी अंत है, क्योंकि ये हमारे कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम का ये प्रकट रूप। और सुखदेव गोस्वामी ये पूरी कहानी बताने के बाद कृष्ण और गोपियों के वो एक आशीर्वाद देते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ लीला को सुनते हैं, हमारे सारे आध्यात्मिक पूरे हो जाएंगे। ये कहानी श्रील प्रभुपाद जी बहुत घनिष्ठ अपने आखिरी दिनों में यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में प्रभुपाद ने अनुवाद किया था, और वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत गहरे, इतने व्यक्तिगत रूप से, इतने अचिंत्य हैं। एक जगह पर श्रील प्रभुपाद भक्ति कैसे लोगों को आकर्षित कर, वो बोलते हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन में जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू किया एक तमाल वृक्ष था जो बहुत सूखा हुआ था, जारे सारे भक्त श्रवण और कीर्तन करने लगे, भक्ति करने लगे उस पेड़ के आसपास। अब वो पेड़ जो है बहुत सुंदर हो, शक्तिमान हो, एक अच्छा स्वास्थ्य हो और बहुत सुंदर सजा हुआ है, और हमारे आंगन में भरा हुआ है वो। भक्ति लता बीज जो है, जो भक्ति की जो बीज है, जो हमारे हृदय में गुरु और वैष्णव कृपा से प्रकट होती, जब हम अभ्यास कर रहे हैं भक्ति, विशेष करके भगवान के श्रवण और कीर्तन करना, भगवान का सेवक बनना, भगवान चैतन्य प्रभु ने सिखाया, वो भी एक पेड़ की तरह हरा भरा होने लगता। और उस पेड़ के ऊपर सबसे अच्छा फल प्रकट होता है, वो कृष्ण प्रेम का फल। और जब वो फल कृष्ण को अर्पण किया जाता है, और जो बगीचा जो 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 माली है वो उस फल का स्वादन करता है, उसको सबसे बड़े सुख अनुभव प्राप्त होता है हमेशा के लिए। और जब वो इस दुनिया में होता है, सबसे बड़ा उस भक्त की सबसे बड़ी इच्छा होती है और कृष्ण को प्रसन्न करना, इस फल की मिठास का वितरण करने के सबके लिए, सब जगह पर, सबके लिए। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी कृतज्ञता है, ये हमारा जीवन है। जय 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 श्री राधे। अगर आपको नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, जोर से बोलो। कल हम सब गोवर्धन के लिए प्रस्थान करेंगे, हमारा एक साथ 2011 वृंदावन के कुछ आखिरी क्षण इस स्थान पर। मैं कितना सुंदर है मैं वर्णन कर, ये भक्ति का वातावरण, आप सबका भक्ति का प्रकाश देखकर, पिछले जब आप हाथ ऊपर करके कीर्तन में भाग ले रहे थे, संकीर्तन में सब लोग कीर्तन में भाग ले, हरे कृष्ण।